आज है 17 मई दिन मंगलवार। स्वागत है आपका नमस्कार भारत में, मैं हूँ सुशीला सिंह। भारत प्रशासित कश्मीर में कथित छेड़छाड़ की शिकार हुई लड़की पलटी अपने बयान से।
तीन पुलिस वाले आए मेरे पास, बोला बेटा क्या बात, ये लगा कि उसने क्यों किया ऐसे मेरे साथ। उसने जो वीडियो लिया वो उन पुलिस वालों ने मुझे सिखाया था जो मैंने बोला। उसने उस टाइम ये नहीं सोचा, उसने दे दिया इंटरनेट।
निजामाबाद में हुई झड़प ने लिया सांप्रदायिक रूप, इलाके में है तनाव। झारखंड में एक दलित युवती के साथ मारपीट का मामला सामने आया। और भारत के सबसे वयोवृद्ध क्रिकेटर दीपक शोधन नहीं रहे।
जो भी उनके टाइम के क्रिकेटर थे वो उनकी बहुत तारीफ करते थे कि बैटिंग की, उनके ओवरऑल जो अप्रोच था गेम का, उनकी खासियत ये थी कि वो काफी एनकरेज करते थे यंगस्टर्स को भी, अपने साथी खिलाड़ियों को भी।
ये सब थोड़ी देर में, पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार मानसी दास से। भारत प्रशासित कश्मीर के हंदवाड़ा में कथित छेड़छाड़ की शिकार हुई लड़की ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पुलिस पर आरोप लगाया कि उस पर दबाव डालकर यह बयान दिलाया गया था कि उसके साथ छेड़छाड़ सेना के जवान ने नहीं बल्कि स्थानीय युवक ने की थी। पुलिस उप महानिरीक्षक उत्तम चंद ने कहा है कि पुलिस की ओर से दबाव की बात बेतुकी है, क्योंकि बयान चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया था। पिछले महीने हंदवाड़ा में कुछ स्थानीय लोगों ने सेना के जवान पर एक लड़की से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद हुए हिंसक प्रदर्शनों और सेना की फायरिंग में 5 लोग मारे गए थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने देश की संसद से पनामा पेपर्स से जुड़े सभी आरोपों की जांच करने के लिए एक कमीशन बनाने के लिए कहा है। संसद में आयोजित स्पेशल सत्र में शरीफ ने कहा कि उन्होंने अपनी दौलत गैरकानूनी तरीके से नहीं कमाई है और उनकी कमाई का एक भी पैसा पाकिस्तान से बाहर नहीं गया है। लेकिन शरीफ की बातों से असंतुष्ट विरोधियों ने संसद से वॉकआउट किया। विरोधियों का कहना था कि शरीफ ने उनसे पहले पूछे सवालों के जवाब नहीं दिए हैं। नवाज शरीफ ने कहा,
जनाब स्पीकर, मेरी दरख्वास्त है कि आप कायदे हज़्ब इख्तलाफ जनाब खुर्शीद शाह साहब और दीगर पार्लियामेंट्री लीडर्स की मुशावरत से एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाएं जो इत्तफाक़ राय से जामे टर्म्स ऑफ रेफरेंस और दीगर मामलात को हतमी शक्ल दें, ताकि बदनवानियों का इर्तकाब करने वालों का तायुन और मुहासबा किया जा सके।
ये थे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। वेनेजुएला की सरकार ने बीते शुक्रवार राष्ट्रपति निकोलास मादुरो के आपातकाल की घोषणा के संबंध में और जानकारी प्रकाशित की है। मादुरो ने देश में आर्थिक और राजनीतिक संकट के कारण इसकी घोषणा की थी। देश में आपातकाल 60 दिनों तक लागू रहेगा और जरूरत पड़ने पर इसे और 60 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। इस दौरान सेना और स्थानीय समिति को खाद्य सामग्री बेचने का अधिकार होगा। बिजली की खपत कम करने के लिए सरकारी क्षेत्र में काम करने की अवधि कम करने की तर्ज पर अब निजी क्षेत्र में भी इसे कम किया जा सकेगा। मादुरो का कहना है कि देश के आर्थिक संकट से जूझने के लिए यह जरूरी है। इस साल का अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर प्राइज दक्षिण कोरिया की लेखिका हान कांग को उनकी किताब दी वेजिटेरियन के लिए दिया गया है। फैसला लेने वाली समिति ने किताब को भूला जा नहीं सकने वाला, शक्तिशाली और वास्तविक बताया है। किताब में एक आम महिला की कहानी है जो एक कोरियाई पत्नी है और फैसला करती है कि वो शाकाहारी बन जाएंगी, और ऐसा करके वह अपने घर, परिवार और समाज के बंधनों को तोड़ती हैं। हान कांग $70,000 के इस इनाम को डेबोरा स्मिथ के साथ बांटेंगी जो इस किताब की अनुवादक हैं। आईपीएल के 9वें सीजन में भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत लाइव रेडियो bbchindi.com और अपने मोबाइल पर सुशीला सिंह के साथ। भारत प्रशासित कश्मीर के हंदवाड़ा में कथित छेड़छाड़ की शिकार लड़की अपने पहले दोनों बयानों से पलट गई है। कल इस पीड़ित लड़की ने दावा किया कि 12 अप्रैल को सेना के एक जवान ने कथित रूप से उसका यौन उत्पीड़न किया। इससे पहले उन्होंने दो स्थानीय लड़कों को अपनी हालात के लिए जिम्मेदार बताया था। घटना के बाद पहली बार मीडिया से बात करते उन्होंने ये कहा कि पुलिस हिरासत के दौरान भी उनका उत्पीड़न हुआ और उन्हें जिल्लतों का सामना करना पड़ा। श्रीनगर से माजिद जहांगीर की ये रिपोर्ट।
श्रीनगर में सोमवार को जम्मू कश्मीर कोलेशन ऑफ सिविल सोसाइटी की ओर से आयोजित प्रेस सम्मेलन में लड़की ने अपने पहले दोनों बयानों से पलटते हुए बताया कि 12 अप्रैल 2016 को जब वो स्कूल से घर जा रही थी तो उस दौरान वो स्कूल के बाहर मार्केट में बने एक बाथरूम में गईं और बाथरूम से वापस निकलने पर सेना के एक जवान ने उनका हाथ पकड़ा और वो रोई और चीखी। उन्होंने कहा,
स्कूल गई तो 2 बजे तकरीबन हमारी छुट्टी होगी वहाँ से। वहाँ से मैं गई वॉशरूम, जब मैं वहाँ से वापस आई तो वहाँ पे एक आर्मी वाला आया जिसने मेरा हाथ पकड़ा, तो मैंने अपना हाथ छुड़ाया और बाहर गई रोते हुए, मैंने चिल्लाया अभी।
साथ ही लड़की ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके साथ इंतहाई किस्म की बदतमीजी की और धोखे से उनका वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाया। साथ ही लड़की ने यह भी कहा कि जो बयान उन्होंने इस स्टेशन में दिया वो उन्हें सिखा कर दिलवाया गया।
वहाँ पे पुलिस वाले 2-3 आ गए, एक का नाम वो मोहम्मद शफी, वो आर्मन, उसने मेरा हाथ पकड़ा इतनी बदतमीजी से, पकड़ के लेके गया वहाँ पे पुलिस स्टेशन। उसने वहाँ पे वो बहुत सारे पुलिस वाले आ रहे थे, गाली देकर मतलब निकल जाते थे। 3 पुलिस वाले आए मेरे पास, बोला बेटा क्या बात है, मुझे लगा कि ये लोग अच्छी तरह से मुझसे बात कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा कि ये आप किसी को भी नहीं कहना, जो आपने अभी कहा हमसे, ये किसी को भी नहीं कहना। उसके घर में बेटियां नहीं थी, उसने मेरा ये आर्मी वालों के इमेज बचाने के लिए उसने मेरी इज्जत दांव पे लगाई। क्यों, क्या उस एसपी जिलानी के घर में बेटियां नहीं थी, उसने क्यों किया ऐसे मेरे साथ। उसने जो वीडियो लिया वो उन पुलिस वालों ने मुझे सिखाया था जो मैंने बोला। उसने उस टाइम ये नहीं सोचा, उसने दे दिया इंटरनेट पे।
ताहम पुलिस ने इन सारे आरोपों को खारिज किया। उत्तरी कश्मीर के डीआईजी उत्तम चंद ने बीबीसी को बताया।
उसमें देखो, उसमें बेसिकली हमारा तो ये कहना है कि हमने उसको कोई फोर्स वगैरह नहीं किया है, जो उसने हमारे को स्टेटमेंट दिए हैं उसलिए मतलब बिल्कुल उसमें दिए हैं उसने।
की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले लड़की के 2 बयान सामने आ चुके हैं जिनमें लड़की ने सैनिक की छेड़छाड़ से इनकार किया था। यह घटना 12 अप्रैल की है जब श्रीनगर से 70 किलोमीटर दूर हिंदवाड़ा कस्बे में कुछ स्थानीय लोगों ने सेना के एक जवान पर लड़की के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया था, जिसके बाद इलाके में हिंसक प्रदर्शन हुए थे और सेना ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई थी जिसमें 3 नौजवानों की मौत हो गई थी, जबकि 2 अलग अलग घटनाओं में गोली और टायर गैस शेल लगने से एक महिला और युवक की मौत हो गई थी। माजिद जहांगीर, बीबीसी हिंदी, श्रीनगर।
इस घटना के सामने आने के बाद वहां जनता सड़कों पर उतर आई थी और इस दौरान लोगों और सुरक्षा बलों के बीच हुई झड़प में 5 लोगों की मौत हो गई थी। मैंने अब से थोड़ी देर पहले श्रीनगर फोन कर बीबीसी संवाददाता रियाज मसरूर से पूछा कि अब लड़की जब बयान से पलट गई है और इसका बयान सामने आया है तो वहाँ किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है।
जी देखें, घटना जो है 12 अप्रैल को घटी और उसके बाद कोई एक सप्ताह तक वहाँ जो उत्तरी कश्मीर है हंदवाड़ा में काफी तनाव रहा, बल्कि 5 लोग मारे भी गए। तो अब जो है उसमें 2 बातें अहम हैं। एक ये है कि सरकार ने इसमें जांच के आदेश दिए थे और वादा किया था कि 15 दिन के भीतर जो है उसकी रिपोर्ट आएगी, वो नहीं आई। अब जबकि अब मई की 16 तारीख थी, 17 तारीख है आज। तो एक पैटर्न रहा है कि जब भी ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसमें बहुत ज्यादा पब्लिक रिएक्शन होता है, उनकी जो कोई भी उनका जो कोई नया मोड लेती है वो खबर या उसमें जो सरकार की रिपोर्ट होती है वो बहुत मामला ठंडा होने के बाद आती है। तो उसके बाद उसका रिएक्शन का पैटर्न चेंज हो जाता है, या तो अखबारों में लोग बयान देते हैं या फिर अगर विधानसभा का सत्र चल रहा हो तो उसमें बहुत ज्यादा हंगामा वगैरह होता है। तो इससे उसके बाद ये नॉन वायलेंट रिएक्शन की तरफ आ जाता है। तो अब जाहिर है कल जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, लड़की ने दावा किया है कि पुलिस ने उसके साथ ज्यादती की है। तो इसके विरोध में अब जाहिर है अखबारों में लोग बयान देंगे, लेकिन जिस तरह का माहौल अप्रैल में था जब ये घटना घटी थी उस तरह का माहौल अब नहीं है।
ये थे श्रीनगर से रियाज मसरूर।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
आजमगढ़ के निजामाबाद क्षेत्र में शनिवार को मामूली झड़प ने सांप्रदायिक हिंसा का रूप अख्तियार कर लिया था। हालांकि प्रशासन स्थिति के नियंत्रण में होने की बात कर रहा है, लेकिन इसकी गंभीरता को इसी बात से समझा जा सकता है कि राज्य के एडीजी कानून व्यवस्था और एसआईटी के आईजी तक यहां कैंप कर रहे हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बल वहां तैनात किए गए हैं। शनिवार को हुई झड़प के दौरान स्थिति को काबू करने के लिए सीओ समेत करीब दर्जन भर पुलिस वालों को भी गंभीर चोट लगी थी। सीधे चलते हैं लखनऊ हमारे सहयोगी समीर आत्मज मिश्र के पास। समीर, ये बताइए कि वहां पर किसी तरह की अफवाह ना फैले इसे देखते हुए इंटरनेट की सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं, क्या अभी तनाव की स्थिति अभी भी बरकरार है वहां पर?
जी सुशीला, जैसा आपने बताया कि वहां पे पुलिस के बड़े अधिकारी और खुद एडीजी कानून व्यवस्था दलजीत चौधरी समेत वहां पे लोग आजमगढ़ में ही डटे हुए हैं। बड़ी फोर्स तैनात की गई है और स्थिति तनावपूर्ण, हालांकि प्रशासन कह रहा है कि नहीं है, लेकिन खबरें अभी रविवार को भी कई जगह आगजनी और झड़पों की खबर आई, कल भी कुछ खबरें इस तरह की आई, हालांकि प्रशासन और पुलिस वहां पे पूरी तरह से मुस्तैद है। तो तनाव कहा तो जा रहा है कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन तनाव नहीं है इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। और चूंकि इंटरनेट की सेवाओं को, जाहिर सी बात है कि इस तरह की चीजें, और आजमगढ़ में ही पिछले कई 2-3 बार इस तरह की चीजें हो चुकी जिससे कि सांप्रदायिक तनाव न बढ़ने पाए, और ये घटना हो गई और इससे थोड़ी गंभीर घटना ये हो गई जिसमें कुछ पुलिस वालों को भी जब झड़प हुई तो उसमें चोट आई, जिसमें सीओ और एसडीएम को भी चोटें लगी हैं। तो इंटरनेट सेवाओं को अभी फिलहाल रोका गया है, कल सोमवार को दिन भर इंटरनेट वगैरह नहीं चले, इसीलिए कि अफवाहें न फैले और राजनीतिक स्थिति न होने पाए, इस घटना को राजनीतिक रूप न दिया जाए, इसके लिए भी प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। कल
जी ऐसी खबरें आ रही थी कि बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल वहां पहुंचा चाहता था, लेकिन उन्हें रास्ते में ही रोक दिया गया।
जी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष केशव मौर्य ने 6 सदस्यीय एक प्रतिनिधिमंडल को भेजा वहां पे स्थिति का जायजा लेने के लिए, जिसमें अभी पिछले साल भाजपा में शामिल हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी बजलाल थे, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष शिव प्रताप शुक्ला थे, 6 लोगों का ये दल जा रहा था, लेकिन उनको बाराबंकी से आगे नहीं जाने दिया गया। भाजपा प्रवक्ता ने हमको ये सूचना दी कि उन लोगों को रोक लिया गया है। तो स्थिति, एक तो अफवाहें ना फैले इसके लिए प्रशासन मुस्तैद है, और इसको घटना को राजनीतिक रंग ना दिया जाए इसको भी बचाने की पूरी कोशिश
हो रही है। जी ये थे लखनऊ से समीर आत्मज मिश्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। झारखंड में रामगढ़ जिले में के एक सुदूर गांव बोंगई में एक दलित युवती को रात में पेड़ पर लटकाकर पीटे जाने और सलाखों से दागे जाने का मामला सामने आया है। युवती का आरोप है कि उसके चचेरे भाइयों समेत 8 लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार करने की कोशिश में जुटी है। सभी लोग गांव छोड़कर फरार हो गए हैं। इस बीच युवती की हालत बिगड़ने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बोंगई गांव से नीरज सिन्हा की ये रिपोर्ट।
और इधर से टांग को फन 2 टेम्पा पहले मार लिया तो बेहोश आ गया, फन उठा लिया, फन थोड़े देर थिरा लिया, फन बांधने लगा और बांध को आम पेड़ पर ठांगा और फन नहीं कोबले तो लास्ट टाइम फन आग कोयला का जोर को, कोयला का पहले से जोर था और स्टील का चटुआ था, उलन धिपा धिपा को और दागने लगा।
19 साल के मनी कुमारी शरीर पर जख्मों को दिखाते हुए कलप जाती है। पहाड़ जंगलों के उबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए हम जब उनके गाँव पहुँचे थे तो वे घर के बाहर एक खटिया पर सोई पड़ी थी। वे बताने लगी कि रांगामाटी गांव के एक युवक से वह प्रेम करती है और दोनों के घर वाले उनकी शादी के लिए भी रजामंद हैं, पर उनके चचेरे भाइयों और जाति के अन्य लड़कों को यह नागवार गुजर रहा था। जुल्मों के बारे में वो बयां करती है।
घर से निकला तो डंट मारा और बेहोश हो गया, अब बेहोश होल के बाद में निकला, बेहोश होल के बाद मतलब उठा के बैठा दिया तो जीवा गंजी बोलता है कि नहीं बे ढंगी करता है और मतलब थप्पड़ में कनफटियाल मारा था, बेहोश गए थे तो लास्ट टाइम बोलने लगा कि उठा उठे उठा को मतलब पकड़ा हाथ में और रस्सी में बांध दिया और मतलब टांग दिया पेड़ पे।
मनी इस दुहाई के साथ डंडे से मार खाती रही, गर्म लोहे से झुलसती रही कि उनके पिता को वे लोग नहीं मारे।
जीबा गंजी बोलता है कि लावे उसको बाबूजी को, उसको भी टांगो, तो हम बोले क्या कि कुछ भी कर सकते, मेरे बाबूजी का ताकत नहीं है, हमको कुछ भी करो मेरे बाबूजी को मारो मत।
वो बताती हैं कि खौफ इतना था कि आधी रात उनकी माँ घर छोड़कर नैहर भाग गई थी।
पास नहीं पास जाइए से बाप के सन मारे ताकि
उनकी माँ गवाई भाषा में बता रही है कि वो कितना डरी थी। गरीब परिवार की इस युवती ने मैट्रिक तक की पढ़ाई की है। हमने उन आरोपियों के नाम भर पूछे तो उनकी सांसें तेज चलने लगी।
रत्थु गंजू, राजू गंजू, टेपा गंजू, लग्न गंजू और अनुलाल गंजू और ऊपर के है उटोला में है भूषण गंजू और जीबा गंजू तारो गंजू।
मनी के पिता बिगन गंजू आम के उस पेड़ को दिखाते हुए कहते हैं इसी पर उन्होंने लटका कर पीटा था, वो इस डरावनी रात के बारे में बताते हैं।
आपकी बेटी कुछ नहीं तो मर जाए वो आपके नहीं ऐसे ऐसे लड़वा पूछा ही और मैंने कहा ये कि ये बेटी ना गो चल तनी तनी होश आ गए ये पानी दे पानी दिलिए पानी दिल के बाद का भले कि आराम कर गो तकर बाद कुछ आराम हुआ अपने दही गात बैठ रहा हो तो का भत हैं दही गात फिर उठे हमके सुध बेटी कि झड़ झड़ा के कांदे हमके बेटी ना काम तनी गोड़वा चिप दे तो चिपी दिए तकर बाद हमार पत्नी हो जो मारल रहा था नहीं कूद गलो।
हम जब गाँव पहुँचे थे तो स्थानीय थाने की पुलिस भी तफ्तीश को मौजूद थी। लड़की की हालत खराब होती देख उन्हें अस्पताल भेजा गया। अनुसंधान में जुटे दारोगा उमेश सिंह का कहना था,
8 लड़कों के विरुद्ध, जो कि 2 लड़के तो उसके अपने चचेरे भाई हैं और अगल बगल के 6 लड़के हैं। सभी लड़कों के हम कल रात में भी खोजबीन किए थे, सभी घर में ताला लगा हुआ है, सभी घर से भागे हुए हैं, सभी की धरपकड़ जारी है। अभी भी हम उस गाँव में हैं, कैंप किए हुए हैं और खोजबीन कर रहे हैं। उन लोगों को जल्द से जल्द अरेस्ट कर लिया जाएगा।
लड़की की हालत बिगड़ रही
है। लड़की की हालत कल हम लोग उसका मेडिकल कराए थे, कुछ दवा वगैरह भी दिलवाए थे, अभी थोड़ा देखे कि उसकी स्थिति थोड़ा बिगड़ रही है, तभी हम लोग अपने गाड़ी से लेकर के उसको गोला में भर्ती कराने जा रहे हैं।
जाति समुदाय की इज्जत की खातिर इस घटना से युवती की जान खतरे में तो है, साथ ही पूरे गाँव में सन्नाटा पसरा है। बोंगई गाँव से नीरज सिन्हा।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम, बीबीसी हिंदी।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत, सुशीला सिंह के साथ। कल तमिलनाडु और केरल में विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए, यहां नतीजे 19 मई को आएंगे। सीधा चलते हैं चेन्नई नितिन श्रीवास्तव के पास। नितिन, ये बताइए कि कल न्यूज चैनल्स पर तो एग्जिट पोल के नतीजे छाए रहे, वहां पर अखबार क्या कह रहे हैं?
करीब करीब सभी अखबारों में वही उन्हीं उसी चीजों का जिक्र है सुशीला। और चेन्नई में आपको बताऊं कि पिछले 4 घंटे से जबरदस्त बारिश हो रही है और बमुश्किल 3-4 अखबार मुझे बाहर एक डीलर के पास मिले, वेंडर के पास, लेकिन उसका फायदा ये रहा कि उसने मुफ्त में मुझे एक चाय पिलाई और उसने कहा फिल्टर कॉफी पिलाएगा। कल मैं अगर दोबारा प्रेस समीक्षा आपके लिए करूँ, जो शायद आप मुझसे नहीं कराएंगे, लेकिन अखबार ये कह रहे हैं कि ज्यादातर अखबार यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि जो एग्जिट पोल्स हैं उसमें से एक एग्जिट पोल ने AIDMK की भी बात की है और ज्यादातर ने करुणानिधि की पार्टी DMK की बात की, उसके बारे में अखबार एनालिसिस कर रहे हैं। मेरे सामने हिंदू है, हिंदू ने साफ साफ कहा है कि एग्जिट पोल्स हिंट एट एंटी इनकम्बेंसी इन तमिलनाडु एंड केरला, यानी उसी खबर पे से लीड किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया भी उसी खबर पर बात कर रहा है, लेकिन ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि टाइम्स ऑफ इंडिया में एग्जिट पोल और नतीजों की खबर छोटी है, उससे ज्यादा बड़े पन्ने पर रजनीकांत, अजीत, सिद्धार्थ, कमल हसन, खुशबू और त्रिशा, ये जो तमाम यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री के सितारे हैं, वो अपने वोटर वोट देने के बाद अपने अपने चिन्ह दिखा रहे हैं। खबर पे लौटते हैं तो जो न्यू इंडियन एक्सप्रेस अखबार है, जो यहाँ पर काफी काफी पॉपुलर भी हो रहा है, उसने ये कहा है, उसने लिखा है कि पहली बार ऐतिहासिक तरीके से जो केरल के गवर्नर है सदाशिवम, वो और उनकी पत्नी ने अपने को वोटर लिस्ट में रजिस्टर कराया, वो लोग वोट देने गए। और उसके अलावा लौटेंगे हिंदू के पहले पन्ने पर, उसने बहुत प्रोमिनेंटली इस खबर को लिखा है कि गुजरात की जो मुख्यमंत्री हैं आनंदीबेन, वो शायद उनको भारतीय जनता पार्टी अगले गुजरात चुनावों के पहले बदलने के बारे में सोच रही हो। और दो खबरें हैं जिनके बारे में जरूर बात करना चाहूंगा। पहली खबर ये कि इस बार तमिलनाडु में अखबारों ने फोटोएं छापी हैं, हालांकि बीबीसी में भी हम लोगों ने कल एक खबर की थी कि तमाम जो युवा लोग थे उन्होंने अपनी शादियों का दिन कल का मुकर्रर किया था ताकि वो शादी करें, माला गाजा बाजे के साथ जाकर फोटो वोट डालें और उसके बाद तस्वीरें खिंचाएं। और एक आखिरी खबर डेक्कन क्रॉनिकल अखबार की जरूर बताना चाहूंगा, आधे पन्ने पे खबर ये है कि ऑटो में बैठकर, चूंकि कल सन्नाटा था, सारे राज्य में वोटिंग की वजह से सब कुछ बंद था, लोग बाग सस्ती बेहतरीन बिरयानी के मजे ले रहे थे।
जी, और आपने लिए कि नहीं बिरयानी के मजे तो आपको मुफ्त में चाय भी मिल गई और बिरयानी के भी मजे लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समाचार पत्रों की समीक्षा के लिए। सीधे चलते हैं केरल, जहां पर दिव्या आर्या हमारा इंतजार कर रही है। दिव्या, वहां के अखबार क्या कह रहे हैं?
यहाँ के अखबारों में भी एकदम पड़ोस के अखबारों जैसी ही जो छाया है वही दिख रही है।
वैसे ही शादीशुदा जोड़े छाए हुए हैं, बल्कि हिंदू अखबार ने एक जोड़े की फोटो के साथ, जिसमें बहुत ही खूबसूरत ऑरेंज और गोल्डन कलर की साड़ी पहनी है जो महिला है उन्होंने, और खूब गोल्ड पहना है, जो यहाँ पे बहुत गोल्ड पहना जाता है शादियों पे, और हेडलाइन दी है वेडेड टू डेमोक्रेसी, यानी कि उनकी शादी भी लगता है लोकतंत्र से ही हो गई। वैसे सभी अखबारों की जो लीड खबर है वो एग्जिट पोल्स के रिजल्ट से है, और जैसा नितिन बता रहे थे और जैसा कल टीवी चैनल्स बताते रहे हैं, केरल में वाम पार्टी के लौटने की बात की जा रही है, जो कि यहाँ पर एक साइकिल चलता है। डेक्कन क्रॉनिकल ने हेडलाइन दी है कि इट्स एलडीएफ टर्न, यानी कि अब लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की बारी है, क्योंकि यहाँ बारी बारी से सरकार बनती है। और साथ में ये भी कहा है कि उमन चांडी जो मुख्यमंत्री हैं, उनके अलावा कोई भी अब ये दावा नहीं कर रहा कि कांग्रेस ही सरकार बनाएगी। पर मैं ये भी कहना चाहूंगी कि टाइम्स ऑफ इंडिया का जो एडिटोरियल है उसमें उन्होंने एग्जिट पोल्स को एकदम दरकिनार करते हुए एक समीक्षा की है कि अगर चुनाव में कांग्रेस जीतती है तो उसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर उसका क्या असर होगा, और अगर वाम पार्टी आती है तो उसका क्या असर होगा। यानी उन्होंने अभी भी एग्जिट पोल्स में, जबकि काफी क्लियरली वाम पार्टियों की बात की जा रही है, फिर भी अभी उन्होंने कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ करने से अपने आप को रोका है। बहुत सारी खबरें हैं चुनाव से जुड़ी हुई। डेक्कन क्रॉनिकल का एक पूरा पन्ना है जो सिर्फ तस्वीरों से पटा है, एक लड़की के 5 नाखून हैं जिनमें सब पार्टियों के सिंबल्स बने हुए हैं, पता नहीं उन्होंने किस पार्टी को वोट किया। एक और अच्छी खबर ये थी कि जो 2014 में ट्रांसजेंडर लोगों को अधिकार मिला, सुप्रीम कोर्ट ने दिया एक तीसरे लिंग के तौर पे उन्हें रिकग्नाइज किया, तो दो ट्रांसजेंडर्स ने कल केरल में वोट किया। इनमें से एक ट्रांसजेंडर तो ऐसी थी जिन्होंने कहा था कि वो एक याचिका डालेंगी कि वो अपनी जान लेना चाहती हैं क्योंकि उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जिसके बाद मुख्यमंत्री उमन चांडी ने उनको मदद की घोषणा की, उन्होंने फिर वो याचिका नहीं दायर की और कल उन्होंने अपना वोट डाला, और उन्होंने कहा कि वो खुश भी हैं इससे, वो उत्साहित भी हैं और उन्हें गर्व भी हो रहा है कि उन्हें ये अधिकार मिला।
जी
देखिए, खबर जो इलेक्शन से जुड़ी हुई नहीं है, बस संक्षिप्त में बताना चाहूंगी कि मुंबई में कोची से जाती हुई एक फ्लाइट कल बारिश की वजह से जब डिले हुई, तो आखिरी बस में जो पैसेंजर्स फ्लाइट तक जा रहे थे, 40 पैसेंजर्स, उनको छोड़ के ही वो फ्लाइट रनवे पे चली गई थी, फिर जब शोर मचाया पैसेंजर ने तब उसको वापस आना पड़ा।
जी दिव्या, इस विस्तृत समाचार पत्रों की समीक्षा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब विषय परिवर्तन करते हैं। पंजाब के पूर्व गवर्नर सलमान तासिर के बेटे शहबाज तासिर को उनके पिता की हत्या के कुछ महीनों बाद ही अगवा कर लिया गया था। थोड़े दिन पहले ही वो चरमपंथियों की कैद से रिहा होकर पाकिस्तान लौटे हैं। उन्हें अगस्त 2011 में लाहौर के गुलबर्ग इलाके से अगवा किया गया था। सोमवार को शहबाज पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली हैदर गिलानी से मिले। अली हैदर को 3 साल तक चरमपंथियों की कैद में रहने के बाद कुछ दिन पहले ही अफगानिस्तान से बचाया गया था। दोनों की मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया में खूब शेयर की गई हैं। बीबीसी उर्दू की हमारी सहयोगी नौशीन अब्बास ने शहबाज तासिर से खास मुलाकात की और सबसे पहले यही पूछा कि चरमपंथियों की कैद में उन्हें किस तरह की यातनाएं दी जाती थी।
मतलब ये था टॉर्चर करने का, हुकूमत को मजबूर किया जाए, मेरी फैमिली को मजबूर किया जाए एक ऐसी चीज़ के लिए जो मुमकिन ही नहीं है। आई थिंक शुरू किया था मुझे दरा मारने से, कौड़ा मारने से, दे लैश्ड मी, मुझे तकरीबन 500 बार से ज़्यादा उन्होंने मारा 3-4 दिनों में। इट स्टार्टेड ऑफ इस तरह, फिर मेरी कमर ब्लेडों से काटी, प्लास लेके फ्लैश मेरी कमर से इन्होंने निकाला, मेरे सारे नाखून हाथों के पैरों के निकाले, मुझे ज़मीन में दफना दिया 7 दिन एक दफ़ा, 3 दिन एक दफ़ा, स्टार्व करते थे। जनरली पैरदारों का रवैया बहुत, मतलब यू नो दे सोड माई माउथ शट, मेरा मुंह सुई धागे से बंद कर दिया, स्टिच कर दिया, खाना नहीं दिया 7 दिन या 10 दिन, आई कान रिमेंबर एग्जैक्टली। आई वॉज शॉट, मुझे गोली मारी टांग के अंदर, आई वॉज़ वेरी लकी मेरी हड्डी को नहीं लगी, शहद की मक्खियाँ हैं मेरे मुँह पे उन्होंने डाली मेरे ख़ानदान को दिखाने के लिए, डिफॉर्म्ड हो गया है, मुझे मलेरिया हुआ, दवाई नहीं दे रहे थे, बैंक अकाउंट दो बैंक अकाउंट दो, जब मेरा फ्लैश भी उन्होंने काटा था, जब ब्लीडिंग इतनी इंटेंस हो गई थी, एक हफ्ता आई वॉज़ ब्लीडिंग, वो ज़ख्म बंद नहीं हो रहे थे, और यही कहते थे बैंक अकाउंट दो बैंक अकाउंट दो। आई टोल्ड हिम एंड यू गाइस प्रॉब्ली नो दिस नाउ फ्रॉम द न्यूज़, इट्स बैड टू बैंक अब्रॉड, इट विल कम आउट, सो मैं उनको बहुत ये बताता था, बट रहम नहीं था, दिल नहीं थे उनके. मैं बस अल्लाह से सब्र की दुआ करता था.
आपकी रिहाई के लिए कोई तावान की रकम अदा की गई?
नहीं, आई अगर मैं भाग गया था, जैसे आई टोल्ड यू, जेल में मुझे एक आदमी मिला, उसने मेरी थोड़ी मदद की कुछ लाख मुझे पहुंचाने तक, एंड कुछ लाख से आई कॉल्ड माय फैमिली एंड आई वाज पिक्ड अप बाय द आर्मी एंड ब्रॉट टू लाहौर.
ड्रोन हमलों के दौरान आपको किन खतरात और महरूमियों का सामना करना पड़ा?
सिर्फ ड्रोन हमले नहीं होते, देयर इज वर्स, इफ एनीबडी कैन अंडरस्टैंड, देयर इज जेट स्ट्राइक्स भी होती हैं, जेट्स की बमबारी. आई थिंक मैं अभी हैदर गिलानी से मिलने गया था और मैं उसको बस कह रहा था कि यू नो वो आवाज़ें वो आसमान में, एंड आई थिंक वो उसको समझ में आ रही थी मैं क्या कह रहा हूँ, हमारे भाइयों को नहीं आ रही थी, बट बहुत खौफनाक होता है.
और आप अपने मुस्तकबिल को कैसे देखते हैं, क्या इरादा है आपका?
लुक, मैं बहुत देर बाद एक ऐसी पोजीशन पे पहुंचा हूं जहां मैं अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला ख़ुद कर सकता हूं, इसलिए मैं बस आई एम टेकिंग इट ईज़ी, जस्ट दोस्तों से मिल रहा हूं, फैमिली के साथ वक्त गुजार रहा हूं, स्मार्टफोन इस्तेमाल करना सीख रहा हूं, तो आई थिंक यू नो आई एम जस्ट टेकिंग इट वन स्टेप एट अ टाइम.
शहबाज तासिर से बात करें थी नौशीन अब्बास. भारत के सबसे वयोवृद्ध क्रिकेटर दीपक शोधन का कल अहमदाबाद में निधन हो गया. वे 87 साल के थे. दीपक शोधन ने 1952 से 53 में पाकिस्तान के खिलाफ अपने पहले ही टेस्ट मैच में शतक बनाया था. इसके बावजूद उन्हें केवल 3 टेस्ट मैच खेलने का मौका मिला. वरिष्ठ खेल पत्रकार विजय लोकपल्ली से हमारे सहयोगी आदेश कुमार गुप्त ने इसकी वजह जानी.
जिस टाइम में वो खेलते थे इतनी ज्यादा क्रिकेट नहीं होती थी, और उस हिसाब से जितना उनका टैलेंट था, पहले टेस्ट में उन्होंने शतक बनाया, तो उनको और ज्यादा क्रिकेट खेलनी चाहिए थी, पर दुर्भाग्य से वो केवल 3 ही टेस्ट मैच खेल पाए. और ये मैं कहूंगा एक तरीके से उनके साथ अन्याय था, क्योंकि जो भी उनके टाइम के क्रिकेटर्स थे वो उनकी बहुत तारीफ करते थे, उनके बैटिंग की, उनके ओवरऑल जो अप्रोच था गेम का, उनकी खासियत ये थी कि वो काफी इंकरेज करते थे यंगस्टर्स को भी, अपने साथी खिलाड़ियों को भी, और उनमें एक ये काबिलियत थी कि जब प्रेशर हुआ तो तैयार रहते थे कि चलिए मैं चला जाता हूँ, मैं बैटिंग कर लूंगा या मैं बॉलिंग डाल लूंगा. तो इस टाइप के क्रिकेटर्स उस इरा में आना एकदम कॉमन चीज नहीं थी, लेकिन जितना उनका टैलेंट था उस हिसाब से केवल 3 टेस्ट खेलना और केवल 43 मैचेस फर्स्ट क्लास खेलना, मुझे लगता है वो एक तरीके से अंडर अचीवर ही.
उस जमाने में क्योंकि बहुत ही धुरंधर क्रिकेटर थे, चाहे वो लाला अमरनाथ थे, गुलाम अहमद साहब थे, और क्योंकि वो बैटिंग ऑर्डर में काफ़ी नीचे आते थे और लेफ्ट हैंडेड बॉलर भी थे, लेकिन शायद उस जमाने में स्पिनर्स का दबदबा ज्यादा था, जिसकी वजह से तेज गेंदबाजों को इतना मौका नहीं मिलता था.
बिल्कुल आपने सही कहा. और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा जो मैंने पढ़ा है, उस टाइम में भयंकर पॉलिटिक्स हुआ करती थी, तो आपको पता नहीं कि आप आज टीम में हैं, अगले टेस्ट में आपको पता लगा आप नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि अगर आप देखें शोधन जी भी जो है वो कैसे खेले अपना टेस्ट मैच, वो इसलिए खेले क्योंकि कलकत्ते में विजय हजारे आए नहीं, तो जगह खाली हो गई तो उन्होंने शोधन साहब को खिला दिया मैच, तो उस हिसाब से वो उनका टेस्ट डेब्यू हुआ. और बेहतरीन टेस्ट डेब्यू अगर आप देखें, नंबर 8 पे आके एक जो है उन्होंने शतक बनाया, और उनके पास तो केवल गुलाम अहमद साहब थे जो बाद में बोर्ड के सेक्रेटरी बने, उन्होंने बहुत उनको आके सपोर्ट किया, तब जाके उनका शतक बन पाया.
विजय लोकपल्ली से बात कर रहे थे आदेश कुमार गुप्त. और अब सुन लेते हैं मुख्य समाचार.
बीबीसी समाचार. आईपीएल के 9वें सीजन में भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान विराट कोहली ने आईपीएल के इस सीजन में अब तक 12 मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने 83.55 रनों की औसत से कुल 752 रन बनाए हैं. केंद्रीय सीरिया में खुद को इस्लामिक स्टेट कहने वाले चरमपंथी समूह के कब्जे वाले तेल के कुओं में कई धमाके सुनाई दिए हैं. पलमायरा के उत्तर में लगभग 50 मील दूर होम्स के शईर तेल के कुओं में कम से कम 3 धमाके हुए हैं. भारत प्रशासित कश्मीर के हंदवाड़ा में कथित छेड़छाड़ के शिकार हुई लड़की ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पुलिस पर आरोप लगाया कि उस पर दबाव डालकर यह बयान दिलाया गया था कि उसके साथ छेड़छाड़ सेना के जवान ने नहीं बल्कि स्थानीय युवक ने की थी। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रही थी मानसी दास। इसी के साथ नमस्कार भारत में बस इतना ही। आपसे विश्व भारती में दोबारा 8 बजे होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत।